ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। चित्रकूट एक तीर्थ है, विविध प्रकार के महात्मा और लोग भले बुरे आया ही जाया करे। जब कोई अनहोनी घटना घटे तो बोले परमहंस जी के पास ले चलो, वहीं इसकी पोल खुलेगी। तो एक स्वामी राम आए और वहां 2 महीना लगातार चित्रकूट में चतुर्मासा करते रहे। तो बड़े सिद्ध पुरुष रहे, दाहिने पांव का खून बाएं पांव में डाल दे तो ये दाहिना सूख जाए, पीला पड़ जाए, और बाएं का दाहिने में डाल दें तो बाएं वाला पीला पड़ जाए, लाल बम हो जाए। ऐसी कुछ सिद्धियां समय समय पर दिखाया करे। और इंग्लिश में ज्यादा बात करें तो बोले परमहंस जी के पास ले चलो, वहां के पंडा सब लोग भगत लोगों ने कहा, वहीं पोल खुली इनकी। तब लेके लोग चले महाराज के पास, काफी आदमी साथ में चित्रकूट के सब भगत। जहां आश्रम से एक थोड़ी दूर रहे, एक बीघा भर कि बीच रोड में बिच्छी मार दिया। अब पांव जन जन करे, अब चैने ने पड़े बतावे ना कि उससे महाराज पता नहीं पांव में क्या हो गया। बोले अभिमान रहा हुई और क्या हुईगा। फिर बैठ गए। एक उनके पास नारियली रही, ये सिद्धि थी कितना भरोस में वो कभी भरती ही नहीं थी। नारियली रही एक पाव की, ये आधा पाव 3/6, लेकिन उसमें किलो भर भर दो तो वो खा ली, ऐसी अफवाह रही है। तो हलवा बनाया गया, फिर उसमें भरा, ठोस ठोस के भरा, आगे घुस बहने के रूप 3/6 से ज्यादा नहीं जाए उसमें, और दबा के भरे नहीं जाए। बोले तब उनकी निगाह पड़ी, बोले रे महाराज अफवाह है, लोगों ने सिद्धि फैला रखी है, वो भी गलत हो गया। फिर बैठे महाराज की जो वाणी सुना, महाराज का स्वरूप देखा, तब सादर प्रणाम किया। बोले महाराज आशीर्वाद बना रहे, मैं नाम सुनता रहा, आज दर्शन हो गया, हमारा सौभाग्य रहा। बोले देखो सब पार लग गया है। उनके साथ बड़े बड़े लोग थे पीछे, और जयपुरिया बहुत बड़ा सेठ, वो चांदी की जनेऊ पहने, एक कौन बड़े बड़े लोग। तो बोले देखो सब तो पार लग गया है, जरा सा बाकी रह गया है, एक बार बिलरिया झपटी तोरे ऊपर, सावधान रहना। तो बोले नहीं महाराज, बिल्ली को तो मैं मार चुका हूं, ऐसे हाथ मसले। बोले बिल्ली को तो मैं मार चुका। बोले हाँ सब ठीक है, ले मैं हूं कुछ कहत हूँ याद रखना। बोले नहीं महाराज मैं तो मार चुका हूँ। बोले अरे हमरो बात याद रखना। बस चले गए और वहां से गए एक महीने बाद एक इंस्पेक्टर की लड़कियां रही वो फुसला ले गई। फिर एक लड़की पैदा हुई उनके साथ में जो भगत थे वो भगत लोग भागे भागे आए। बोले महाराज घृणा हो गई, गुरु ही महाराज है लेकिन घृणा हो गई। अब तो उससे एक लड़की और पैदा हो गई। आप बहुत समझाए महाराज आप महापुरुष ने माने नहीं। आखिर वो चुड़ैल पटक के चढ़ बैठी और कहीं कुछ नहीं। हम लोगों को भी घृणा हो गई महाराज। वही लोग जो भगत थे आके महाराज को बतावे। जब वो आए थे तब भी हम वहां थे। फिर उसे बताने लगे भगत लोग तब भी। एक दो साल बाद फिर वो आए अकेले। इस बार साथ में कोई नहीं था। और पहले शरीर रहा एकदम लाल सेव की तरह और जब दोबारे आए तो एकदम पीला पड़ गया था जैसे शरीर में खूने नहीं है। और आए तो सीढ़िया चढ़ने लगे एक एक सीढ़िया संकुचाते संकुचाते। तो फिर हमने कहा महाराज स्वामी राम आ रहे हैं लगता है। तो महाराज उठ के बैठ गए लेटे थे देखा। बोले अरे न सुख जाओ चले आओ जो घूम के लड़े थे वो कायर नहीं कहावत है। वो घूम के लड़े थे वो कायर नहीं कहावत है चले आओ भल आयो यही सब बात तुम्हें। तो आए और बैठ गए। बोले महाराज मैं क्या करूं 103 साल की हमारी माता जी हो गई। वो कहने लगी तुम ब्याह न करी तो मैं मरूंगी नहीं। उसके संतोष के लिए महाराज हमें ऐसा करना पड़ा। अब मैं फिर निकल गया हूँ। बोले बहुत बढ़िया इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। घूम के लड़े थे वो कादर नहीं कहलाता। फिर निकल गया अमेरिका। आगे जो हुआ एक कामरू कमक्षा के पंडा जी बढ़िया सदवाई बेस बना के यहाँ चित्रकूट में आके बैठ गया। तमाम टोना टोटका जादू टोना दिखावे सब महात्मा लोग जितने चित्रकूट के थे सब साष्टांग दंडवत करे कजरी लगावे नाखून में तो बताए देख फलाना सामान वहां रखा है फलाना सामान वहां रखा है तुरे पृथ्वी में धन गड़ा है कई हथकंडे। तो पंडा लोग बोले यार ले परमहंस जी के पास ले चलो वहीं इसकी पोल खुलेगी। बेसबर बनाए साधु है नहीं है भी कि नहीं तो परमहंस जी बताएंगे। चलिए परमहंस जी का दर्शन करे। बोले चलिए हम जरूर चलेंगे। यहाँ आया तो ऐसे सिद्ध जैसे प्रणाम करते हैं से झुका के किया हल्का सा। बोले अच्छा अच्छा यह सिद्ध बाबा है। बोले हाँ हम कामरू कमक्षा के सिद्ध हैं। बोले जा हम के दिखाओ तो आपन। बोले लीजिए महाराज। जब दिखाने लगा तो आवे ही ना। फिर दूसरे का दिखाया वो भी नहीं आया। फिर कजरी लगाया वो भी नहीं आया। जब झैंप मिटाने के लिए यहाँ कोई एकांत जगह है तो महाराज के एकांत एकांत है आगे जरा थोड़ी जगह एक जगह और है तीर्थ। बस चल दिया। 15-25 लोग पीछे लगे तो उनसे जीव छोड़ा बैल मैं अकेला जाऊंगा। फिर चले ही गए काफी 2-1 किलोमीटर पीछा किए लोग। फिर बोले नहीं नहीं मैं अकेला जाऊंगा। फिर चला ही गया लोग छोड़ दिए। बोले महाराज शिशु 3 महीने से ठगत रहा अच्छा भगायो। और फिर जाके चिट्ठी लिखा। बोले महाराज मैं कोई साधु नहीं था मैं कामरू कामक्षा का पंडा हूं, नागा महात्माओं की संग से सब सीख लिया था कुछ अथकंडे, और महाराज जिस दिन से आपको दिखाया उस दिन से जो दिखाया वो भी गायब, और जो और जानत रहा हूं सब के ही टोना टोटका वो खत्म। महाराज यही सिद्ध में जी खा रहा था, वो रोजगार खत्म हो गया, और जो पंडागिरी थी तो भाई लोग बांट लिए, हमारी सब बांट ले गए। जब मैं मर रहा हूँ महाराज कृपा कर देते फिर हमें आ जाता। तो महाराज तब वो चिट्ठी महाराज ने पंडों को बुलाया, बोले और देख लो तोरे सिद्ध बाबा की चिट्ठी आई है। तो सब कुमार से बोले महाराज ये सिद्ध बाबा बोले की चिट्ठी। फिर 4 महीना बाद आया सादा कपड़ा में, दंडोत किया बैठ गया, बोले महाराज पहचाने हो? बोले वो सिद्ध बाबा तो नहीं है तू? बोले अरे महाराज इस भेष में भी पहचान लियो, कोने बात का सिद्ध बाबा महाराज, हम कामरू कमक्षा का पंडा हूँ। बोले करे सारे जो पंडा तो महात्माओं से काहे घोड़े गिरा उतरा रे? बोले का करूँ महाराज, यदि वो गिरते रहे तो मैं हूँ भीतर भीतर प्रणाम कर लेता रहा हूँ, तो बाहर से इसलिए नहीं बोलत रहा हूँ कि इनकार करूँगा तो हमार चटकी हुई सदवा ये चौपट हो जाए, कमाई कम हो जाए, कम इसलिए नहीं बोल रहा था। अब तो नहीं गिरवाई है? बोले क्यों से नहीं महाराज, पहले ही मैं दंडोत कर लिया करूं, महाराज हमारी विद्या हमें मिल जाए। तो देख यहां तो ढोंग धतुर मोरे आगे नहीं चली, हाँ यहां से चला जा 2-1 किलोमीटर दूर, वहां देख तुम्हें आ जाएगी। तो वहां से गया 2-1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां जाके लगाया तो आ गई। फिर चिट्ठी लिखा महाराज, इतनी दूर जाने पर विद्या आ गई, भगवान कृपा बनी रहे, अब आपका दर्शन कबो न करियूं, इस बार तो मिल गई, दोबारे रगड़ने दो। दो गोल भील महाराज के बाजू से सीढ़िया से चढ़ने लगे पहाड़, मधु शहद उतारने वाला यंत्र तंत्र लेके ऊपर चढ़ने लगे सीढ़िया पर। तो लोगों ने कहा महाराज ये मधु तोड़ने वाले हैं, आश्रम के ठीक ऊपर जो मधु लगा इन्हीं को तोड़ना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा देखो रे पूरा पहाड़ तुम लोगों का, पूरा जंगल तुम लोगों का, देख इस सैकड़ों छत्ते लगे हैं सब तोड़ो खाओ, ऊपर जो हमारे ठीक आश्रम के ऊपर दो एक छत्ते हैं इनको मत तोड़ना, लोग दर्शन करते हैं सुंदर लगते हैं ये रहने दे, इसको मत तोड़ना। फिर ऊपर से जब तुम लोग जला देते हो मधुमक्खी तो जली हुई मधुमक्खी आके हमारे सामने गिरती है, बद्दा लगता है लोग देखते हैं, तो यहाँ हत्या न करना। बोले हाओ चलेंगे। और ऊपर पुराने गिरे पड़े मकान तमाम छते थी अब भी हैं, उनके ऊपर बैठ के बांस में बांस बांस की छाल से बांधते हैं, रस्सी का उनको भरोसा नहीं, और बांस में एक बांस दो बांस तीन बांस छह बांस बांध देते हैं, और सीढ़ी निश्चयनी बन गई, उसमें खूंटियां रखते हैं उन्हीं में पांव देके ऊपर चढ़ जाते हैं, यही उनकी सीढ़ी है। तो 2-3 बांस बांधा पता नहीं कितना, और तो महाराज बोले महाराज वो तो इन्हीं को तोड़ना चाहते हैं। महाराज बोले करे तोरी खलन की नालायकों, मना किया तभी नहीं माने। महाराज डांटते हुए ऊपर सीढ़िया चढ़ने लगे तो वो भी गुर्राने लगे, बोले अरे मधु तो हमारा पुश्तैनी बाप दादों की कमाई है, पहाड़ हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, आप जंगल रोक रहे हैं महाराज। महाराज डांटे तो वो भी गुर्राने लगे, फिर भी महाराज डांटते हुए आगे बढ़े। तो ये धारकुंडी महाराज उस टाइम ब्रह्मचारी रूप में नए थे, आगे चल के बोले महाराज ये कोलभीली क्या जाने संत महात्मा किसे कहते हैं, पत्थर वत्थर मार दे तो चोट लग जाए। करे पत्थर कैसे मारी रे? तू तो कहतरा मैं मिलिट्री में रहा हूँ, यही छाती के माथे मिलिट्री में रहा, दे तुरी बदाम की भूख लगी सारी भाग्या से। फिर भी लोग प्रार्थना किए तब चले आए। तो फूल अच्छा बेटा उल्टी माला जपता हूँ, अब तू ही जनी हो, आके बैठ के भजन में। तो एक एक डंडे में तो मधु उतार के भरते हैं वो रहता है, उसमें टोकरी बंधी रहती है, एक डंडे में आग लगी रहती है किनारे किनारे आग लगी रहती, उससे कुछ छाता फूंक देते मधुमक्खी, कुछ जल जाती है, कुछ अध जड़ी हो जाती, कुछ उड़ जाती। तो आग लगा रहा था, वो आग लगाने वाली संयोग से आग लग गई, जिस सीढ़िया में उठ रहा था उसमें लग गई। अब चिल्लाया, अरे मोरे बिंदकी में आग लग गई, मैं मरत हूं मोही बचा। तो इधर वाला दौड़ा, जिस छत पर बैठ के उन्होंने सीढ़िया बनाई ऊपर चढ़े, उसके छत के किनारे जो रेलिंग होती है ना, इतनी ऊंची होती है जंगल में पक्की पत्थर की, उसके किनारे किनारे पत्तियों का ढेर था, उस ढेर के अंदर अजगर बैठा हुआ था। इन लोगों को मालूम ही नहीं था, खटखट किया वो चुप पड़ा था। जहां धम धम चला तेजी में, अजगर फूं करके खड़ा हो गया सामने। तो बोले, अरे मोही अजगर घेरे है। बोले, मैं मरत हूं मोरी सीढ़िया में आग लग गई, मोही अजगर घेरे। महाराज के और साले सतही हो महात्मन के। इतने में गिरा धड़ाम, देना पता नहीं कितना ऊंचा, तीन तीन चार मंजिला से, जैसे कोई शहरों में चार मंजिल से गिर पड़े, पांच मंजिल से गिर पड़े, इतना ऊपर से गिरा। चोट तो लगी लेकिन बच गया। फिर दोनों ने मिलके उस अजगर को काट डाला, जंगली है ना। बोले, भागो रे, बाबा को जानत है हम लोग बचब ना, चले गए। और वहां से थोड़ा नीचे गए होंगे एक फरलांग करीब, वही विशाल बट वृक्ष था, अब गिर गया। उसमें छाता एक था मधु का, उसमें वही व्यक्ति जो यहां चढ़ा था चढ़ गया, वहां उसका संतुलन बिगड़ गया, गिरा धड़ाम और मर गया। अब दूसरा वाला साथी चादर में बांध के पीठ में लाद के ले गया घरे। अब शोक मनाया गांव में, तीसरे दिन गांव में आग लग गई, 40 घर का कुल भीलों का गांव था, 40 घर जल गए। तब फिर भाग गए रिश्तेदारियों में, जहां था जहां जिसकी रिश्तेदारी थी, गांव उजड़ गया। और जहां भी रिश्तेदारियों में रहे वहां सपन में दिखाई पड़े खड़े खड़े भी कि परमहंस जी त्रिशूल लेके पीछा कर रहे हैं मार डालने के लिए। और सो जाए तो छाती में खड़े हैं त्रिशूल लेके, बोले और तंग करेगा महात्मन के, और त्रिशूल लेके पीछा कर रहे हैं। तब सब इकट्ठे हुए पथरा गांव में, गणेश नंबरदार पंडित पाड़े बड़े आदमी वहां के, बोले नंबरदार, चलो महाराज से माफी दिलवाई दो, हम लोगों को बोलना नहीं आता है, नारियल बताशा अगरबत्ती का पैसा हम लोग देंगे, आगे आगे चलो हमें माफी दिवाई दो। तो आगे आगे गणेश नंबरदार पंडित, उस क्षेत्र में वह पंडित रहे, सबकी कथा बांच दे पढ़े रहे कि नहीं, भगवान जाने मंत्र बड़ा बढ़िया पढ़ा कर, हम लोगों के पुरोहित वह रहे हैं। तो आप पंडित उतनी दूर से, संस्कृत तो उनके मुख से हम नहीं सुने, हिंदी फर्स्ट क्लास बोले, महाराज नहीं कटपट नहीं पेट गाही, पाप करत निष्बासर जाही, नाथ हमारी ये बड़ सेवकाई लेहो ने बासन भूषण चुराए जब राम जी के ही नहीं छोड़े। आखिर लेके खटखटा चोर भाग गया सीता जी का जेवर, वहां गुप्त गोदावरी में लक्ष्मण ने पीछा किया लाए, और तुलसीदास के ही नहीं छोड़े तबो यह करत रहे लोग, तो आपके कैसे छोड़ दी हैं? इन लोगों की कौन गलती है? इन लोगों का भी यही धंधा ही रहा, क्षमा करें मैं इनकी माफी दे। तो महाराज बोले अरे करे सेवा करियो। एक दूसरे अमूता के बोले सेवा पेट भरते नहीं कौन सेवा करे। तो बोले अच्छा लकड़ी लाइयो। बोले हाँ ये कर लेंगे। तो बोले कोई भी संसी आश्रम में आवे कहीं से भी तुम्हारी बिरादरी वाला एक बोझ लकड़ी लाके और डाल दिया करो। अब रोज दो चार गठड़ा में पड़ जाया करे। वहां रिश्तेदारी में सूचित कर दिया सबको, धड़ाधड़ वहां गठड़ी पड़ा करें, फिर आके महाराज को प्रणाम करें, महाराज उनको गांजा प्रसाद दे दें, दम लगा लें, चकवा के चले जाएं। न रोटी न पंजीरी न मिठाई, सारे कोल भील पूरा जंगल भगत, फिर बराबर सेवा में आधी रात को जरूरत हो तो हाजिर रहा करें। यादव बहुत बढ़िया थे उस सब भगत, पंडित सब भगत, और जितने थे जब चित्रकूट में कोई पूछे यहां महात्मा कौन है तो सब बता दे परमहंस जी के वहां चले जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। कोई आगे न कोई पीछे, अकेले अपने आसन पे बैठे रात और दिन, दिया बत्ती कुछ नहीं, लेकिन दो एक साल हो गए तो धुना जल गया था, धुने पे अपना बैठे रहे। भगवान के बस डटे रहो, यही जगह है तुम्हारी। आस्ते आस्ते एक दो शिष्य हो गए, साधना काल में रात दिन भजन, सोते जागते भजन और कोई काम नहीं। ध्यानस्थ हो के दिन में देखो तो बैठे हैं, रात में देखो तो बैठे हैं, कभी गंगा किनारे कभी सीढ़ियों के पास कभी झाड़ी के पास, संगदोष नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बरसात में तो चार चार महीने आदमी से भेंटने हो ये आदमी होता कैसा है। बस शांति से भजन में बढ़िया मन लगा करे, वो भगवान भी कहें बस बैठे रहो। अब जो दो एक साल बीता तब भगवान ने बोलना बंद कर दिया। महाराज सोचे कि कोई गलती हो गई क्या, दिमाग ही उड़ गया, बात क्या, भगवान ने बात करना क्यों बंद कर दिया, क्यों कि आगे कुछ बताने के लिए था ही नहीं, क्या बताऊं। अंतिम स्तर पर आ गया तो एकदम शांत, अनायास फिर आदेश मिलने शुरू हुए, अनायास भगवान ने फिर बताना शुरू किया। एक बार गुरु महाराज को दिखाई पड़ा अनुभव में, आकाश में एक चमड़ा तना हुआ है, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा समा शुद्ध नहीं, उस चमड़े में अनंत योनिये, सब में एक एक जीव उस मुड़ी निकाले तड़प रहा है, तरस रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, गर्भवास की यातना झेल रहे हैं, उन यातनाओं से मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए पुकार रहे हैं। मैं भी उसी में था, उन योनियों के बीच में, अनायास देवयोग से मैं बाहर निकल आया, खुले आकाश में चलने लगा, फिर आस्ते आस्ते जमीन पर आ गया तो सब ने एक स्वर से कहा, बड़ा भाग्यशाली है, इसको तो गर्भवास से छुटकारा मिल गया, ये तो मुक्त हो गए, बड़े भाग्यशाली हैं। और हम खुले आकाश में दीप्यमान वातावरण में मैं चला जा रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, दीप्यमान है। एक अनुभव, गर्भवास से छुटकारा। फिर तो महाराज कोई जो लापरवाही करे भजन में तो डांट के एक छड़ी मार दे, बड़े सूत थे, यही पराक्रम के माथे भजन हुई, मातारी का गर्भ छुड़ावे आया है, भाग यहां से घर जा, तो उससे भजन न हुई। तो एक बार डांट पड़ जाए तो महीना भर के लिए चाबी भर जाए, फिर नींद न आवे, टाइम टेबल पक्का हो जाए, भजन होने लगे। तो महापुरुष डांटते हैं तो कल्याण के लिए, नेकी मारते हैं। वहां कभी कभी आटा आ जाए, नमक रोटी बन जाए, कभी अचार रोटी बन जाए, यही रहा करें भोजन। एक दिन महाराज के पीछे कोठड़ी है, महाराज कोठड़ी में जाने लगे तो एक देवी श्वेत वस्त्र पहन के खड़ी थी गेट पर, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तो महाराज चिंता में पड़े, बात क्या, हमारी कोठड़ी और हम ही को मना कर रही है। बोले अंदर लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, महाराज के है ससुरा जो हमारी कोठड़ी में घुस गया तो 1.5 फीट का कर अंतर किवाड़ी टेढ़ी खुली थी, भीतर पूर्ण प्रकाश था। देखा तो बोले मैं ही सोया हूं, मोरे चरण दबावत है, एक बहुत दीप्यमान देवी सो रहे हो श्रृंगार करके, गमार चरण दबावत है, हमारा शरीर ऐसा नहीं है जैसा है, एक दिन स्वर्णिम दग दग चमकता हुआ सेवा कर रही लक्ष्मी जी, अंदर लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। महाराज के कहीं घुस गया हमारे कोठरी में, देखो तो देखा तो मोरे रूपुआ लेटा है, मोरे गोड़ दबावत है, मोही के मना करत, बस दृश्य खत्म। उस दिन से आकाश वृत्ति से व्यवस्था होने लगी, चारों तरफ से व्यवस्था होने लगी, ठंडाई बनने लगी, पुष्कल भोजन बनने लगा। महाराज क्या हो, लक्ष्मी जी मोर सेवा करते, मैं चाहूं तो विश्व को खिला सकत। ताघर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं शंभु करे कुतवाली, जाघर ब्रह्मा भय टहलवा विष्णु करे रखवाली, तो उन घर चेती है रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए। महाराज कहो बिल्कुल सही है। बस इस घटना के थोड़े ही समय लगातार एक के दो दिन के अंतराल से फिर अनुभव मिलने लगे, और भगवान की ओर से सने सने विभूतियां प्रकट होने लगी। फिर दिखाई पड़ा अनुभव में कि बड़ा भारी भैंसा, एक 15 फीट ऊंचा और ऐसे ही 25-30 फीट लंबा, भयंकर सींग, हाथ हाथ भर डेढ़ हाथ के रोए, ऐसे ऐसे चले। महाराज को देखा तो पीछा कर लिया, आगे महाराज पीछे भैंसा। तो महाराज दौड़े, एक स्वच्छ तालाब था जलाशय, उसमें कूद पड़े। भैंसा भी सीधा जहां महाराज कूदे थे वहां कूदा। महाराज पानी के नीचे नीचे तैर के इस पार आके बाहर खड़े हो गए। भैंसा महाराज को ढूंढते ढूंढते रोआ गल गए,
चमड़ी गल गई, मांस गल गया, हड्डियां गल गई, सींग गल गए और विलुप्त हो गया। तब आवाज आई, आज से काल पर विजय होगी, काल जयी हो गए। इतने में वो महात्मा शुरू में जो आशीर्वाद दिया था, जो केहू से निपट गई है, कहते हैं केहू से निपट गऊ, केहू से निपट गऊ, जो फिर केहू से निपट गई है। वो महात्मा झंडा लेके पीछे खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। महाराज की निगाह पड़ी तो आहिस्ते से प्रणाम किया, बोले ओ ये आशीर्वाद दिया था, का केहू से निपट गई है। शरीरिया से जीत भी जाते तो परिणाम हार भी थी, शरीर भी बुढ़ा होता, ये भी मरता। वास्तविक विजय है काल पर विजय। एक बार चित्रकूट में बैठे बैठे सुनाई पड़ा, कल से रामनगर काशी में रामलीला शुरू होने वाली है। तो महाराज बोले हो, एक बार हमने रामलीला देखी है महीना भर, हमारा मन है कि एक बार मैं रामलीला फिर देख लूं। फिर विचार किया, चलो देखिए। हमें उठ के खड़े हो गए, तब भगवान ने मना किया। चलने को तैयार हुए, जब चलने को हुए पांव आगे बढ़ाया, तब भगवान ने मना किया, मत जाओ। तो रुक गए, बोले भगवान देखे का मन तो था, लेकिन आप हुक्म करो तो नहीं जाएंगे। शाम को चिलम भर के, चिलम हाथ में लेके बैठे तो चिलम खींचा नहीं, हाथ की हाथ में रह गई। घंटा भर बैठे ही रह गए, चिलम बुता गई। फिर चेत हुआ, बोले यार मैं उड़त उड़त रामनगर पहुंच गया रहा हूं, वहां रामलीला देखा, ये था, ये हुआ, वो हुआ। और रोज एक दिन महाराज बहुत उदास, शाम की घटना नहीं बताया, सुबह बताने लगे 8-9 बजे करीब। बोले यार गजब हो गया, राजा साहब जिस हाथी पे सवार थे वो हाथी पगलाए गया, जनता के ऊपर चढ़ बैठा, लगता है मर जाएंगे 15-15-50 आदमी, मैं हूं दबत दबत बचे हूं किसी तरीके से। और रामलीला में और व्यास जी भगवान का, राम जी का हाथ पकड़ के घिसला के भागे, जब राम जी भागे डर के मारे, तब बड़ी थपोड़ी बजी। बोले लो राम जी और डर रहे हैं हाथी से, इसलिए बड़ी तड़तड़ तड़तड़ थपोड़ी बजी, ले ओ भगवान भी डर रहे हैं हाथी से। उसी समय रामलीला देख के तुरंत एक भगत वहां से कार से भागा, चित्रकूट आया रातों रात, और सुबह चित्रकूट से उठ के अनुसुईया आ गया था। वो सीढ़िया चढ़ रहा था, महाराज की बात सुन रहा था अनुसुईया में। बोले महाराज आप कब चले आए, हम भी दबत दबत बचे, सचमुच राम जी का व्यास जी हाथ पकड़ के भागे तो बड़ी तालियां बजी, महाराज आप कब चले आए। बोले हम गए नहीं थे, हम यहीं बैठे बैठे देख रहे थे। तो महाराज के हो भगवान जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सभी रूप धारण कर सकते हैं और जो चाहो देखना वो दिखा सकते, भगवान समर्थ। इसके बाद भगवान अपनाते हैं। एक बार महाराज ने देखा कि मैं मर गया,
इसी दौड़ में फिर भजन में बैठे थे। रात्रि में भजन के समय ब्रह्म बेला में आते ही अनुभव, सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव, शरीर जागता रहे, मन सहन करे भजन के समय में जो दृश्य आते हैं कि मैं मर गया हूं और अपनी लाश को गंगा किनारे में ही फूंक रहा हूं, तो लकड़ी इकट्ठा करके चिता तैयार करके अपनी लाश को उठा के मैं ही उस पर रख रहा हूं, रख के तैयार करके मैं ही चिता में आग लगा रहा हूं, लगा के फूंक दिया, धाए धाए लाश जलने लगी, जल के एकदम राख हो गया, फिर वो राख गंगा में बहा दिया, फिर देखा कि जमीन में जहां तहां कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, तो लकड़ी से खरौंच के वो भी बहा दिया, हड़िया में पानी लेके वहां उस जगह को चिता स्थली को धो दिया और अंत में हड़िया उसी में बहा दिया, वो लकड़ियों के साथ राख और कोयलों के साथ हड़िया बही जा रही है। तब खड़ा होके हमने देखा बहती हुई राख लकड़ियों कोयलों के ढेर को, इतना करने में हमें एकदम थक गए, पसीना पसीना हो गया, थक के काफी चूर हैं, खड़े होके देखा गंगा जी की तरफ तो उन कोयले राख के ढेर में से एक पुरुष निकला, एक पुतला निकला, वो आदमी का रूप बन गया, वो हमारा ही रूप बन गया, स्वर्णिम पुरुष, प्रकाश फेंक रहा था, जगमग जगमग किरण फेंकता हुआ पुरुष हमारी ओर बढ़ा, पानी के ऊपर चलते हुए हमारी ओर चला आ रहा था, वो डूब नहीं रहा था, ऐसे चल रहा जैसे फिलहाल कोई जमीन पर चले और नीचे से लहर चल रही है। हमारे सामने आया तो तब आकाशवाणी हुई, प्रणाम करो। महाराज ने प्रणाम किया, बोले यही तुम्हारा स्वरूप है। अब स्थूल सूक्ष्म कारण वो तीनों शरीर फूंकता गया, अब जो शेष बचा ये आत्म स्वरूप, यही परमात्म स्वरूप, अब से तुम्हें इसी स्वरूप में रहना है, यही तुहार स्वरूप है। महाराज के हो, उस दिन से हमारे स्थूल शरीर का रूप वो बदल गया, पहले करिया करिया न जाने कैसे रहा भद्दा, वो दिन से देहियों का स्वरूप बदल गया हो, इस शरीर का स्वरूप वो आत्म स्वरूप, आत्म दर्शन स्पर्श और स्थिति वाला स्वरूप, यही बुद्ध को दिखाई पड़ा था, उनकी जीवनी में आता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।